وعلى محمد ما صلى على محمد. إنا بالقاسم محمد محمد واجل وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد محمد و آل محمد وعجل فرجہ. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں دین کی ہدایت نصیب فرمائی ہے، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہمارا تعلق قرار دیا ہے، ماہ مبارک رمضان جیسی فضیلت ہمیں بتا سکتے ہیں، ان نعمتوں کے سائے میں اور زیادہ ترقی میں ہماری زندگیوں میں نورانیت آتی ہے، روحانیت آتی ہے، ہم ان کے وجود سے اور زیادہ متصل ہوتے ہیں. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. ما صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرح. یہ چند دن جو آپ کی خدمت میں عرائض پیش ہوئے اور چند دن اور پیش ہوں گے، ان میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان سے ایک فائدہ اٹھا سکیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی میں جیسے باقی مہینے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور بعض اوقات ہم لوگ ڈیولپمنٹ اپنے اندر فیل نہیں کر پاتے، شاید ہو رہی ہو لیکن ہمیں بعض اوقات فیل نہیں ہوتا کہ ہم پتہ نہیں ڈیولپ ہوئے نہیں ہوئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ماہ مبارک رمضان آئے اور ماہ مبارک جب ختم ہو، اور مثال کے طور پر آپ 30 دن یہاں پر آئے اور گھر گئے، تو آپ اپنے اندر ایک فیل کریں، آپ کو خود احساس ہو کہ بھئی یہ جو میں نے 30 دن یہاں پر آنا جانا کیا اس سے مجھے کچھ فائدہ ہوا ہے، میری روح کو اور میرے وجود کو ایک فائدہ ہوا ہے. اب یہ فائدہ کا لفظ جو ہوتا ہے یہ بڑا ہی جنرلائز سا ایک لفظ ہے. فائدے بہت سارے ہوتے ہیں، انسان کے جسم کو فائدہ ہوتا ہے، انسان کی روح کو فائدہ ہوتا ہے، بعض اوقات کسی ایک چیز میں فائدہ ہوتا ہے تو دوسرے میں نقصان ہو جاتا ہے. بھائی جب انسان خمس دیتا ہے تو روح کو تو شاید فائدہ ہوتا ہے لیکن مال کا تو نقصان ہو جاتا ہے، مال تو کم ہو جاتا ہے. تو اب وہ آدمی کہتا ہے کہ مولانا یہ بتاؤں یہ فائدہ ہوتا کیا ہے، یہ پہلے یہ پتہ چل جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی ایسی چیز کو فائدہ کہہ رہے ہوں جو بعد میں میرے لیے نقصان بن جائے. تو میں بعض اوقات یہ سوچتا ہوں کہ یہ پتہ چلنا چاہیے دین کا جو ہمیں فائدہ ہونا ہے وہ فائدہ ہونا کیا ہے. اچھا، اب دو راستے ہیں، ایک دین کا وہ فائدہ ہونا ہے جو مرنے کے بعد برزخ، آخرت، قیامت ان میں ہونا ہے، اور کچھ دین کا وہ فائدہ ہونا ہے جو دنیا میں ہونا ہے. تو اب مثال کے طور پر اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بھائی یہ جو دین ہے اس کا سارا فائدہ مرنے کے بعد ہوگا، مرنے سے پہلے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا، اب ایک آدمی کا تو موت پر، آخرت پہ یقین اتنا ہے کہ وہ دنیا کو تو وہ گھاس ہی نہیں ڈالتا، وہ تو بڑا خوش ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے مرنے کے بعد دین کا فائدہ ہوگا تو بہت ہی اچھی بات ہے. مثال حاضر ہے، ایک آدمی گیا حضرت ابو ذر غفاری کے گھر پر، مہمان بنا. حضرت ابو ذر غفاری کے پاس چند اونٹ تھے، غریب آدمی تھے، بہت زیادہ دولت مند آدمی تو تھے نہیں، چند اونٹ تھے. اچھا، اونٹ وہاں پہ بہت بڑی دولت ہوتی تھی، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ کم سے کم بھی ہمارے زمانے کی گاڑی تو سمجھ ہی لیں آپ، اگر تیل کا کنواں نہ کہوں تو کم سے کم گاڑی تو کہوں، تو گاڑی کے برابر تو کم سے کم ویلیو تھی. تو وہ ایک مہمان آیا تو حضرت ابو ذر غفاری نے اس سے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ جاؤ اور ایک اونٹ، یہ جو کھڑے ہیں باہر، ان میں سے ایک لے کر آؤ میرے لیے تاکہ میں تمہارے لیے ذبح کروں. تو وہ گیا और उसने देखा कि अबू ज़र गफ़ारी का कहीं नुकसान ना हो जाए, तो वो दुबला पतला से एक ऊँट निकाल के लेके आया। उसने कहा भाई ऐसा ना हो कि मैं मेहमान बन लूँ तो ऐसा बोझ बन जाऊँ बेचारे के ऊपर। तो जो लेकर आए तो अबू ज़र गफ़ारी ने देखा, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने, और उन्होंने कहा कि तुम बहुत कंजूस आदमी हो, नहीं तो मैंने थोड़ा सा उसको उर्दू में किया। तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने कहा कि इतनी क्यों कंजूसी की तुमने? तो उसने कहा कि अबू ज़र मैं मेहमान हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी खातिर तुम्हारा कोई बहुत अच्छा ऊँट क़ुरबान हो। तो अबू ज़र ने कहा कि अगर यानी लुब लुबाब ये कि अगर ये यही ऊँट क़ुरबान होना होता और कुछ ना होता तो बात तुम्हारी सही थी, लेकिन अगर इसके बदले में मुझे अल्लाह ने कुछ देना है तो मैं दुबला ऊँट क्यों क़ुरबान करूँ? क्या करूँगा दुबला ऊँट देखे? भाई बहुत सादा सी एक बात है, कभी कभी हम लोग कहीं बैठे होते हैं बात कर रहे होते हैं, अगर मैं आपको अमेरिका ही में कोई इन्वेस्टमेंट की स्कीम बताऊं जो ऑथेंटिक भी हो, रिलायबल भी हो, उसका रिटर्न भी मिसाल के तौर पर बहुत अच्छा हो, तो आप उसमें थोड़े से पैसे लगाना चाहेंगे या ज्यादा पैसे लगाना चाहेंगे? जितना होगा सब लगा देंगे भाई, जब ऑथेंटिक भी है, रिलायबल भी है, रिटर्न भी अच्छा है तो कम क्यों लगाऊं? सही है। अब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी कह रहे हैं आखरत ऑथेंटिक है, अल्लाह जैसे ने सिक्योर किया हुआ है, मेहमान को खिलाने पे रिटर्न भी बहुत हाई है, तो दुबला ऊंट क्यों लगाऊं? लोग दो तरह के हैं, या तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आखरत पे इतना यकीन है, फिर वो ये नहीं पूछते कि दुनिया में रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक रिवायत बहुत नफीस रिवायत जहन में आ गई, उसमें कहा कि अगर तुम लोगों को ये पता हो तो कि दुनिया में मुश्किलात पर खुदा आखरत में क्या देगा तो तुम लोग आफियत ना मांगते, बदन को कैंची से काटना मांगते। अगर तुम्हें पता होता कि खुदा दुनिया की मुश्किल के बदले में आखरत में क्या देगा तो तुम लोग खुदा से क्या मांगते कि बदन कैंची से कटे। क्यों? तुम्हें पता है रिटर्न बहुत हाई है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आखरत का यकीन है, अल्लाह की एश्योरेंस के ऊपर यकीन है, वो कहते हैं दुनिया की बात नहीं करो, ये बताओ आखरत में क्या मिलेगा। अच्छा अब भाई क्या सब ऐसे ही हैं? सब ऐसे ही होते तो दुनिया ऐसी क्यों होती? ये जो दुनिया ऐसी है इसका मतलब ये कि सब ऐसे नहीं है। सब क्या सोच रहे हैं? सब जो हाफ हार्टेड मुस्लिम्स होते हैं वो कहते हैं आखरत में तो खैर मिलेगा ही मिलेगा, ये बताओ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम जैसे लोग जब उनको समझाने लगते हैं तो हम भी दो तरह के हो जाते हैं। हम कहते हैं देखो अगर तुमने दीन के लिए काम किया ना तो क्या किसी के पास दौलत होगी जो तुम्हारे पास आएगी? तो हम भी दौलत का, वो दौलत की लालच में होता है, हम दौलत की लालच बढ़ा देते हैं। हम कहते हैं खुदा इतनी दौलत देगा, इतनी दौलत देगा, तुम गिनते गिनते पागल हो जाओगे। देखो ये एक कैटेगरी होती है। दूसरा कैटेगरी ये होती है कि वो कहती है कि अच्छा बेटा ऐसा करो, पहले ये सोच लो तुम्हें दुनिया में चाहिए क्या है, फिर बात करेंगे कि खुदा दुनिया में क्या देगा। तो फिर वो पूछेगा दुनिया में देगा या नहीं देगा, हम कहेंगे हाँ देगा, लेकिन ये जरा देख लो कि तुम्हें दुनिया में चाहिए क्या है, इसको अच्छी तरह देख लो। अब मैं टिपिकल केस पाकिस्तान से उठ के आने वाले यहां पर रखते हुए एक मिसाल अर्ज करता हूं, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई एक आदमी पाकिस्तान से उठकर माइग्रेट करके अमेरिका आ गया, सही है, तो मैं उससे एक बात पूछूंगा, तुम चेंज ऑफ ज्योग्राफी की खातिर यहां पर आए हो या कुछ और की खातिर आए हो? सिर्फ इसलिए आए हो कि मुल्क चेंज हो जाए या किसी और चीज के लिए आए हो? तो वो जवाब में मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं कहेगा कि मुझे तो सिर्फ जगह तब्दील करनी थी। तो भाई तू टंडू इलायार क्यों नहीं चला गया? अगर जगह ही तब्दील करने दी तो वहां चला जाता। तो भाई तू वहां नहीं गया, तू यहां आया। इसका मतलब यह है कि सिर्फ जगह तब्दील करनी नहीं थी, कुछ और भी चाहिए था। हाँ, अब मसलन क्या चाहिए था, तो मिसाल के तौर पर वो अपनी बातें करेगा तो वो कहेगा मौलाना देखो सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी नहीं है, तो मुझे सिक्योरिटी चाहिए, यही होगा ना। फिर वो कहेगा कि मौलाना वहां पे मसला ये है बच्चों का जो कैरियर है ना उसका कुछ पता नहीं, एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पे एजुकेशन अच्छी है। दो बातें हो गई। तीसरी बात वो मुझसे कहेगा कि मौलाना वहां पे कमाई भी जो है ना वो थोड़ी सी क्या कहते हैं एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, बहरहाल मैं उसको छोड़ देता हूँ, मामला खराब हो जाएगा, आप लोगों की उर्दू भी खराब हो जाएगी बिलाज में। तो उसने कहा कि भाई कमाई वहां पे वैसी है बस, यहां पे जरा कमाई अच्छी हो जाती है। तो तीन बातें हो गई। उसने कहा भाई सिक्योरिटी का इशू है, बच्चों के कैरियर का इशू है, और तीसरा मसला कमाई का है। सही है, अब मैं इस बात को पकड़ लूंगा। मैं कहूंगा अच्छा भाई एक देखो, एक हो गया सिक्योरिटी का इशू, अच्छा अगर खुदा ना करे तुम सिक्योरिटी की खातिर यहां पर आए और तुम्हें यहां आके पता चला कि मेरी जान खतरे में है, एक सिनेरियो, तो फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ। एक और सिनेरियो लेते हैं, एक आदमी वहीं पर है, माशरा तो इनसिक्योर है, खुदा ने उसको सिक्योरिटी की फीलिंग दे दी है। आप कहेंगे भाई ये कैसे हो सकता है, अगर सोसाइटी इनसिक्योर है तो इसके दिमाग में सिक्योरिटी की फीलिंग कैसे आ सकती है। अच्छा ये भी मैं अर्ज करता चलूं, सिक्योरिटी और इनसिक्योर होना ये ज्यादातर फीलिंग में है, ज्यादातर फीलिंग में है। क्यों, कैसे हो सकता है ऐसे, खुदा ने मुताल फरमाता है अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। खुदा वो है जिसने उनको भूख में सैराब कर दिया और खौफ में अमन दे दिया। अब आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चाहिए, देखिए बहुत सादा सी बात, मुझे वो मिसाल देनी है जिसमें बाहर इनसिक्योर हो अंदर सिक्योर हो। शबे आशूर, बाहर इनसिक्योर है और हुसैनी कैंप के अंदर सब सिक्योर, कोई मसला ही नहीं है, सब सिक्योरिटी, कोई परेशान हो रहा है क्या, कोई घबरा रहा है क्या, कोई भागता है क्या, नहीं। तो भाई ये तो ये हो गया। अच्छा कुछ दफा बाज़ औकात ऐसा होता है बाहर सब कुछ सिक्योर होता है, बंदा अंदर से इनसिक्योर होता है, होता है या नहीं होता है, होता है, दसियों गार्ड्स लगे हुए हैं, पता नहीं कौन कौन से सिक्योरिटी सिस्टम्स लगे हुए हैं और अलार्म्स लगे हुए हैं और बंदा अपने अंदर इनसिक्योरिटी फील कर रहा है। तो अब मैं उससे पूछूंगा कि भाई तुम्हारा पहला पॉइंट था सिक्योरिटी का, तो तुम यहां पर आए ताकि सिक्योरिटी फील करो, जबकि तुम्हें मैं मिसाल देके बता रहा हूं कि खुदा बाज लोगों को इनसिक्योर सोसाइटीज में सिक्योरिटी दे देता है। अब देखिए मैंने आपको शबे आशूर की मिसाल दे दी, शबे हिजरत की मिसाल तो अब बताने की भी, इससे ज्यादा इनसिक्योर एनवायरमेंट कोई हो सकता था क्या, सारे कबीलों के एक एक बंदे शमशीर लिए बाहर खड़े हैं, इससे ज्यादा इनसिक्योर कुछ हो सकता था, अंदर सिक्योरिटी है, इतना सिक्योर कि वो जो शेर में है कि वैसे तो रात को सोते नहीं थे मौला अमीरुल मोमिनीन, लेकिन उस रात ऐसी नींद आई कि बस, ऐसी नींद आई कि बस, सिक्योरिटी, ये हो गया मामला। चलिए साहब दूसरा मामला था भाई बच्चों का अच्छा अच्छा फ्यूचर, अच्छा कैरियर। तो मैं एक और बात पूछूंगा, सिर्फ बच्चों का कैरियर चाहिए या बच्चों की मोहब्बत भी चाहिए, भाई सिर्फ कैरियर चाहिए बच्चों का या बच्चों की मोहब्बत भी चाहिए, तो सिर्फ कैरियर किस पागल को चाहिए? अब कौन हाथ उठा के कहेगा भाई मैं तो पागल कह ही दिया उसको, तो मामला खराब कर दिया, अब कौन हाथ उठाएगा? हकीकत यही है भाई, अगर कोई बच्चा मुझसे ला ताल्लुक हो गया, मुझसे कोई ताल्लुक ही नहीं रहा ना औज़ु बिल्लाह ताला, उसका अब उसका कैरियर अच्छा रहा या बुरा रहा मुझे क्या मिला? मुझे पहले बच्चे की मोहब्बत चाहिए, साथ में बच्चे का कैरियर भी चाहिए। देखिए मैंने मोहब्बत की बात की और एक और बात नहीं कही, वो इसलिए नहीं कही कि मोहब्बत दिल से ज्यादा नजदीक थी। बच्चे का सिर्फ कैरियर चाहिए या ईमान भी चाहिए? भाई सिर्फ कैरियर नहीं तो ईमान भी चाहिए। ईमान भी चाहिए या कैरियर ईमान के साथ चाहिए? नहीं, पहले ईमान चाहिए फिर कैरियर भी चाहिए। चलो दो बातें हो गई। तीसरी बात थी कमाई, वहां कमाई सही नहीं हो रही है और यहां पे कमाई सही हो रही है, तो मैं एक और बात पूछूंगा, कमाई चाहिए या आसाइश चाहिए? आसाइश किसे कहते हैं? लग्जरी की फीलिंग। लग्जरी एक चीज होती है, लग्जरी की फीलिंग एक और चीज होती है। एक दफा लग्जरी होती है, लग्जरी की फीलिंग नहीं होती है। एक दफा लग्जरी की फीलिंग होती है जबकि कोई लग्जरी नहीं होती है। क्या चाहिए? लग्जरी चाहिए या उसकी फीलिंग चाहिए? फील होना चाहिए। बाहर है और मुझे फील नहीं हो रहा तो मैं क्या करूंगा? ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक आदमी को नजर नहीं आ रहा और मैं उसके सामने मूवीज चलाए जा रहा हूं, वो भाई वो देख ही नहीं पा रहा क्या मूवीज चला रहा। तो सबसे पहले आपको यह तय कर लेना चाहिए आपको दुनिया से चाहिए क्या है, अच्छी तरह तय कर ले। आखिरत तो चलिए हुआ हुआ है पहले से तय, दुनिया से तय कर ले दुनिया से क्या चाहिए, फिर आप ये सोचें दीन इनमें से मुझे क्या देगा, दीन मुझे कैसे देगा। तो मैंने आपकी खिदमत में दो तीन चीजें रखी, वो आपकी मिसाल पे जो ज्यादा आपके नजदीक फेमिलियर हो, अब उससे निकालकर मैं इसको जनरलाइज करता हूं पूरे ऊपर की मिसाल के तौर पर मुझे क्या चाहिए जिंदगी में, तो मैं कहूंगा भाई मुझे कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेस चाहिए, मुझे जिंदगी में कुछ खुशियां चाहिए और उन खुशियों के पीछे मसलन फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, चाहने वाले लोग हो सकते हैं, सोसाइटी में रिस्पेक्ट हो सकती है, ये सब चीजें चाहिए। लेकिन इन सब के पीछे मुझे क्या चाहिए? खुशी चाहिए। और ये सब चीजें अगर मुझे खुशी ना दे कोई फायदा नहीं है फिर मेरे लिए, क्या करूंगा? कितना बड़ा मैं एक दुनिया का निजाम खड़ा कर दूं जो मुझे खुशी ना दे, तो मुझे क्या चाहिए? तो आयजान मोहतरम मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूं, क्या मैं आपसे कहना चाह रहा हूं आप कहीं ना जाएं पाकिस्तान में रहें? नहीं, मैं नहीं कह रहा, जहां मर्जी जाना चाहें जाइए। अभी तो आप कैलिफोर्निया आई हैं, दूसरे चांद पे भी जाना चाहें चांद पे भी चले जाएं, वो एक्स रॉकेट वाला कुछ बना रहा है उसको बुक कर लीजिए चले जाइए वहां। दूसरा मसला हो गया कि भाई औलाद का खुशियां लो, लेकिन मैं बॉटम लाइन में जो आप जाके कहना चाह रहा हूं वो ये कि सबसे पहले ये जज कर लो असल में क्या चाहिए। असल में जो चाहिए उसको पकड़ने की कोशिश करो, वो कहां से मिलती है। अब हम सब के साथ एक प्रॉब्लम है, बच्चों का कैरियर हम ढूंढ सकते हैं, हम अपने लिए बहुत सारी चीजें ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये जो खुशी का मामला है ये बहुत ही अजीब मामला है। और ये दुनिया के अंदर पता नहीं कितनी स्टडीज हो चुकी हैं जो ये बता रही हैं कि पोजेशन को बढ़ाने से खुशियों का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि स्टडीज बिल्कुल अगेंस्ट इसके हो चुकी हैं कि एक सर्टेन फाइनेंशियल हेल्थ के बाद पैसे के बढ़ने से कोई खुशी नहीं बढ़ती है, बिल्कुल नहीं बढ़ती है। चाहे आप किसी भी साइंस में जाकर इसको देख लीजिए, चैलेंज कर लीजिए जाके, जैसे अब हमारे यहां तो बड़े मजेदार काम हो गया, लोग गूगल पे ढूंढने को रिसर्च कहते हैं, चलिए आप रिसर्च कर लीजिए। भाई कोई कहता है मुझे मैंने रिसर्च किया, मैं पूछता हूं भाई क्या रिसर्च किया, पता चला गूगल पे ढूंढा है। अरे भाई ये गूगल पे ढूंढना रिसर्च होता है कोई? लेकिन अब लोग इसी को कहते हैं, तो जाइए भाई आप रिसर्च कर लीजिए, रिसर्च करने आप और जाकर देख लीजिए, तो असल में इनका कोई ताल्लुक नहीं बनेगा। अच्छा ये खुशी कैसे मिलती है? اب میں آ رہا ہوں اس بات کے اوپر، یہ دین خوشی کیسے دیتا ہے؟ دین کا خوشی دینے کا ایک نظام ہے۔ یہ جو چیزیں تھیں ان کا میں نے تذکرہ عرض کیا کہ کیسے کرتی ہیں، بہت ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ آپ لوگوں کو یوں لگے گا جیسے میں ان چیزوں کی برائی کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، تو میں اس کی برائی نہیں کرنا چاہ رہا، جو آپ جانتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں دین خوشیوں کو کیسے پورا کرتا ہے۔ تو پہلے اس سے ایک مثال دوں گا، آپ کو ایک مثال دوں گا اور دو تین مثالیں بیچ میں دے چکا ہوں کہ آؤٹ آف دا وے خوشی کیسے لاتا ہے خدا۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں مثال دی کہ بھائی شب ہجرت سید مولا امیر المومنین سیکیور فیل کر رہے ہیں جبکہ باہر انسیکیورٹی تھی، شب عاشور وہ لوگ سیکیور فیل کر رہے تھے جبکہ باہر 100% ایک لحاظ سے انسیکیور ماحول تھا، اور اسی طریقے سے میں نے حضرت ابو ذر کی مثال دی کہ پیسہ نہ ہوتے ہوئے وہ اپنے آپ کو غنی تصور کر رہے ہیں، امیر تصور کر رہے ہیں، حضرت سلمان فارسی کی مثال ایسے، اہل بیت کی مثالیں اسی طریقے سے۔ اب میں آپ کو ایک اور دنیاوی مثال دے کر اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ خوشی، آرام، آسائش ان چیزوں کا تعلق ایک اور طرح سے ہے۔ یہ وہ مشکل ہے جس کو سمجھنا ہم لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ کیوں؟ ابھی ہم اس دوڑ کے اندر ہیں، ابھی ہم دوڑ کے اندر ہیں۔ دو انسانوں کو یہ باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں، یا تو کوئی ایسا انسان ہو جو دوڑ سے باہر نکل جائے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اوپر چلا جائے، دوسرے والے فلور میں چلا جائے اور وہ نیچے دیکھے کہ لوگ کس میں دوڑ رہے ہیں، اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ لوگ غلط دوڑ رہے ہیں۔ یا ایسا ہو کہ دوڑ دوڑ کر وہ فائنل لائن ٹچ کر دے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ دوڑ غلط تھی۔ اس غلط ریس کو دو لوگ ڈسکور کر سکتے ہیں، یا تو ریس سے باہر نکل آئے، اوپر جا کے دیکھے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ ریس کے اینڈ پہ پہنچ جائے، اگر ریس کے اینڈ پہ پہنچ گیا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بات کیا ہے۔ خدا نمتال دوسری والی مثال کو کہتا ہے سراب۔ آپ نے دیکھا ہے جو لوگ ڈیزرٹ وغیرہ کے اندر، مٹی وغیرہ کے اندر کہیں گم ہو جاتے ہیں تو ان کو دور سے پانی نظر آتا ہے، وہ ہیٹ ہوتی ہے ایکچولی، جب گرم مٹی کے اوپر ہیٹ پڑتی ہے تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے پانی، بہت زیادہ پانی ہے وہاں پہ، جیسے سمندر ہے، دریا ہے، تو بےچارے بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں۔ جب وہ اس جگہ پہ پہنچتے ہیں اس ہائٹ کے اوپر بڑی مصیبت سے، تو وہاں جا کے دیکھتے کچھ بھی نہیں ہے، تو وہی ڈیزرٹ ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے تم جب غیر خدا کے پیچھے بھاگتے ہو تو تم ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اور جب تم اس سراب پہ پہنچ جاتے ہو تو تم کو پتا چلتا ہے وہاں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ خدا ہے بس۔ تو عزیزان محترم، دو انسانوں کو یہ ریس پہچاننے کا موقع ملتا ہے، یا اوپر چلا جائے یا اینڈ پہ آ جائے، اور اگر بھاگ رہا ہے تو یہ تو بھاگتا رہے گا اور یہ سمجھتا رہے گا کہ میں کامیاب ہونے والا ہوں، بس تھوڑی سی دیر کی بات ہے، اور وہ تھوڑی سی دیر زیادہ تر کبھی نہیں پوری ہو پاتی۔ اب ایک مثال، چھوٹی سی مثال، کہانی مانند ایک مثال آپ کو بتایا، میرا اسٹوری ٹیلر کا جو پورشن ہے آج کل بڑا اسٹرانگ ہوا ہوا ہے تو میں اس کے اوپر چل رہا ہوں۔ اصل میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ افطار کے بعد جب کھانا یہاں تک آ جائے تو باقی بات جگہ رہی کہاں ہے، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ اسٹوریز کی جگہ رہ گئی ہے، اسی کو سنانے کا کام نکل سکتا ہے۔ تو ایک بادشاہ تھا، کہانیوں میں ایسی ہوتا نا، ایک بادشاہ ہوتا ہے، ایک فقیر ہوتا ہے، ایک ملنگ ہوتا ہے۔ تو وہ ایک بندہ خدا تھا، اس کو نیند نہیں آ کے دے رہی تھی، بڑا بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا، سب کچھ تیار اس کے لیے، اس کو نیند نہیں آ کے دے رہی تھی۔ تو جب اس کو نیند نہیں آئی تو وہ اپنے گھر کے باہر نکلا، تھوڑا سا لان وغیرہ کے اندر میں ٹہل لوں، واپس آ جاؤں۔ تو جب وہ لان وغیرہ میں ٹہل رہا تھا تو اس کو صبح کے وقت کے نزدیک ایک آواز آئی گلی میں سے، تو اس نے دیکھا کہ گلی میں وہاں پہ ایک فقیر ٹائپ کا آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور وہ خدا سے کہہ رہا ہے خدایا تیرا شکر، تو نے کتنی اچھی رات مجھے دی۔ اب بہت سخت سردی پڑ رہی تھی اور وہ آدمی جو تھا وہ بہت ہی کم کپڑوں کے اندر سخت سردی میں خدا کے سامنے کہہ رہا تھا خدایا تو نے کتنی اچھی رات دی۔ تو یہ جو بندہ خدا تھا یہ بہت خوار ہو گیا، کہنے لگا یہاں سب کچھ ہے تو رات صحیح نہیں ہے، اور وہ جو بیچارہ پڑا ہوا ہے اسے کچھ نہیں ہے، وہ اللہ کا شکر کر رہا ہے کہ رات اتنی اچھی کیوں دی۔ تو پھر اس نے کہا کہ اس کو بلا کے لاؤ، اس کو بلا کے لائے۔ تو اس نے کہا کہ تم یہ میرا گھر دیکھ رہے ہو، اس میں کیا کمی ہے؟ اس کا کوئی کمی نہیں۔ کہنے لگا میری رات اچھی نہیں گزری، اور تم گلی میں پڑے ہو، کپڑے تمہارے چیتڑے ہیں، बाहर इतनी सख्त सर्दी हो रही है और तुम कह रहे हो अल्लाह से इतनी अच्छी रात दी, क्या है तुम्हारे पास? कह लगा अच्छा एक बात बताओ, ये जो इतना अच्छा घर है, अगर तुम्हारी अच्छी रात गुजरती तो क्या होना था? कह लगा भाई सोना था। कह लगा मैं तुमको बताता हूं, बिल्कुल सही कहा तुमने, अगर तुम्हारी बहुत अच्छी रात गुजरती ना तो तुम्हें रात को अच्छी सी नींद आती, तो मेरी आधी रात तुम्हारी सबसे अच्छी रात थी और मेरी आधी रात तुम्हारी सबसे अच्छी से भी बेहतर रात थी। कहने लगा कि अब यह तो मुमकिन नहीं है, तुम्हारी आधी रात मेरी अच्छी रात के बराबर थी और आधी रात मेरी अच्छी रात से भी अच्छी थी। कहने लगा हां। कहने लगा कैसे? कहने लगा मैं सारे दिन घूमता रहा, मैं थक गया और मैं थक थक के मैं मर गया और सर्दी के मारे मेरी जान निकल रही थी, तो मैं एक जगह के ऊपर पहुंचा, वहां एक आदमी का तंदूर था, उसने अभी अपना बिजनेस बंद किया था, तंदूर जो उसने था वो ठंडा करने लगा, तो मैंने उससे कहा कि तुम इसको ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे ही बंद हो जाएगा, ये पानी डालने की क्या जरूरत है? उसने कहा ठीक है, तो ऐसे ही चला गया। कहने लगा अब वो जो उसमें कोयले थे वो तो गर्म थे, तो बड़ी जबरदस्त गर्मी निकली वहां से, गर्मी निकली, बाहर सर्दी थी, मैं उसके नजदीक सोया और ऐसा सोया कि मुझे तो पता ही नहीं चला क्या हुआ। तुम्हारी अच्छी रात गुजरनी थी तो क्या होना था? सोना था ना, मैं सो गया, बेहतरीन सोया, मुझे तो पता ही नहीं चला क्या हुआ। कहने का आधी रात जब कुछ गुजर गई, मेरी नींद पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, उसका तंदूर भी ठंडा हो गया, तो मेरी आंख खुल गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुदा से कहा खुदा है तूने कितनी अच्छी नींद दी मुझे, इतनी अच्छी नींद आई, अब मैं तेरे लिए इबादत करूंगा। कहने लगा मैं खड़ा हुआ, मैंने बाकी रात अल्लाह के सामने राजो नियाज किया, इबादतें की। तेरी जो अच्छी गुजरती वो क्या गुजरती? तूने सोना था ना, मैं आधा सो लिया, और जो तेरी नहीं होनी थी वो अल्लाह की बंदगी थी, मैंने आधी रात बंदगी भी की। सही, ये मुमकिन है एक कहानी हो, लेकिन इसके अंदर जो रियलिटी रिफ्लेक्ट हो रही है वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है। अगर मैं बहुत अच्छा वक्त गुजारूंगा दुनिया में तो क्या गुजारूंगा? मजे लूंगा ना। और किसी आदमी को खुदा यही सब मेहनतें किए बगैर किसी और तरह से उससे बेहतर मजा दे दे। अच्छा, उसकी निशानी क्या होती है? निशानी बहुत अच्छी होती है, और ये मुझ जैसे को सीखना पड़ेगा, वो क्या है? अगर कोई काम मैं जिंदगी में करूं जिसको करके मुझे मजा आए, जिसको करके मुझे मजा आए, ऐसा मजा जिसको मैं किसी चीज से ना बदलूं, वो मेरी लाइफ की अचीवमेंट है। अब आप ये देखिए, आपको जिंदगी में कौन सा ऐसा काम है जिसको करके वो मजा आता है जिसको आप रिप्लेस नहीं करना चाहते? वो आपकी लाइफ की अचीवमेंट है, आपको अपनी वर्थ समझ में आ जाएगी। वर्थ क्या है हमारी? कीमत कुल उम्रिन मा यहसुनो, हर शख्स की कीमत वो चीज होती है जो ये समझता है कि इसकी ब्यूटी है। ब्यूटी क्या है आपकी? किसी की ब्यूटी उसकी बॉडी है, तुम्हारी वर्थ तुम्हारी बॉडी है। किसी की ब्यूटी उसका घर है, तो तुम्हारी वर्थ तुम्हारा घर है। किसी की ब्यूटी उसकी इंसानियत की खिदमत है, उसकी वर्थ इंसानियत की खिदमत है। ये देखो तुम्हारी ब्यूटी क्या है। अच्छा, ब्यूटी को कैसे आइडेंटिफाई करूं? इस तरह आइडेंटिफाई करो कि कौन सा ऐसा काम है जिसको तुम रिप्लेस नहीं करना चाहते, वो तुम्हारी असली वर्थ है। तो अजीजान मोहतरम, मुझे चाहिए मैं खुदा से मांगते वक्त ये सोच लूं मुझे क्या चाहिए। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने की कोशिश करूंगा कि अब देखिए बिल्कुल टू द पॉइंट, बिल्कुल डॉट। मसलन अभी चलो फिर मुकद्दम, गाड़ी चाहिए या अच्छी ट्रैवलिंग चाहिए? गाड़ी चाहिए या अच्छी ट्रैवलिंग चाहिए? अच्छी ट्रैवलिंग चाहिए, गाड़ी तो टूल है, मुझे अच्छी ट्रैवलिंग चाहिए, अगर गाड़ी के बगैर अच्छी ट्रैवलिंग मिल जाए फिर गाड़ी का क्या करूंगा। मसलन अगर एक आदमी को इस जमीन के कोने से दूसरी जमीन के कोने तक पहुंचना मिल जाए, गाड़ी लेके क्या करेगा? गाड़ी में क्या ख्वार होने की जरूरत है? या वैसे ही वहां पहुंच रहा है, वो पागल है गाड़ी लेगा? तो तुम्हें दुनिया चाहिए या सिक्योरिटी चाहिए, घर चाहिए या आसाइश चाहिए? जो चाहिए वो ढूंढ लो, वो खुदा से मांगो। तो मुझे चाहिए, मैं खुदा से दौलत ना मांगू, दौलत के पीछे जो चाहिए था वो मांगू। सही बात यह है, औलाद का कैरियर मांगू या औलाद से मिलने वाली खुशी मांगू? औलाद से मिलने वाली खुशी मांगू। एक खतरनाक खुतबा है नहजुल बलागा के अंदर, इमाम ने फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा जब औलाद खुशियां नहीं देंगी, औलाद आंख का सुकून नहीं बनेगी। वो कह रहे हैं पहले से कि देखो मांगने में होशियार रहना, जो कुछ मांगना ढंग से मांगना। बाद दफा तुम लोग गलत चीजें मांग बैठते हो। तो आयजान मोहतरम शब कदर नजदीक है, इसलिए मैंने आज का दिन इस बात के ऊपर रखा कि भाई आप ये आइडेंटिफाई करें अच्छे तरीके से आपको दुनिया से क्या चाहिए। देखिए छोटी सी एक बात है, हम और आप कुछ देर के बाद, आप इंशाल्लाह बहुत देर में, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जब हमें दुनिया की रियलिटी कोई फर्क नहीं देगी। मिसाल के तौर पर एक आदमी को पता हो कि 2 मिनट के बाद मुझे मरना है, और मैं इसको कहूं कि मुबारक हो तुम्हारा लॉटरी में $1 बिलियन का टिकट निकल आया, तो क्या कहेगा? कि 2 मिनट जश्न मना लेता हूं। अब वो कहेगा भाई 2 मिनट रह गए, 1 बिलियन का नहीं 1 ट्रिलियन का निकला है, मुझे क्या मिलना है? काश हमें ये बात जल्दी समझ में आ जाए, कि जरा जल्दी समझ में आ जाए कि यहां जो कुछ है इसका एक एक्सपायरी का डेट है, वो एक्सपायर हो जाएगा, और एक्सपायरी की डेट है हमारी मौत। तो जो कुछ आप मांग रहे हैं एक्सपायर होने वाली चीजों को नहीं मांगिएगा, पेरिशेबल आइटम को मत मांगिएगा, वो आइटम मांगिएगा जो चले बाद में भी, और वो जो चलता है उसकी नेचर कुछ और होती है। तो मिसाल के तौर पर मैं दुनिया में क्या मांगू, अब देखिए मैं अपने ऊपर रखता हूं, आपका गेम खत्म करता हूं, अपने ऊपर लाता हूं। तो मिसाल के तौर पर मैं खुदा से फेम मांगू या सर्विस मांगू? फेम तो मेरे मरते ही खत्म हो जाएगी भाई, और मरने से पहले भी खत्म हो जाएगी। अभी मैं बोल रहा हूं, अगर मुझे खुदा ना करे ऐसे कोई पैरालाइज हो गया जिसमें बोल नहीं पाया, तो मेरी कोई कदर है फिर? रियलिटी है ना, कुछ भी नहीं, खत्म हो गया मामला। जब तक बोल रहा हूं बात है तो ये पेरिशेबल आइटम है, ये नहीं चाहिए। हाँ सर्विसेज मिलनी चाहिए, अपने हम ईमान लोगों की खिदमत कर सकूं ये मिलना चाहिए। क्यों? ये बाकी रहेगा, ये अल्लाह के नजदीक बाकी रहेगा। अच्छा अब मैं एक और बात पूछता हूं, अब देखिए वक्त तो खत्म हो रहा है लेकिन थोड़ा सा इसको बढ़ाते हुए, अल्लाह से पैसा मांगूं या रिस्क मांगूं? पैसा मांगूं या रिस्क? आप मुझसे फौरन कोई कह सकता है मौलाना पैसे और रिस्क में फर्क क्या होता है? जिस पैसे के ऊपर रिस्क लिखा है, जिस पैसे के ऊपर गॉड लिखा है, इनमें भी कोई फर्क है क्या? नहीं, पैसे के ऊपर क्या लिखा है इससे कोई फर्क नहीं होता, गॉड लिखो या रिस्क लिखो दोनों गलत कर रहे हैं। लेकिन किसको हम पैसा कहते हैं, किसको रिस्क कहते हैं? आप ये देखिए कि आप जहां कंज्यूम कर रहे हैं अगर वो अल्लाह के लिए है तो वो दौलत आपकी रिस्क की थी, और जहां आप खर्च कर रहे हैं वो अल्लाह के लिए नहीं है तो इसका मतलब है ये दौलत सिर्फ दौलत थी, रिस्क नहीं थी। अब देखिए मैं इसको रूल में ढालता हूं, जो रिसोर्सेस मुझे खुदा के नजदीक लेके जाएं वो रिस्क है, और जो रिसोर्सेस खुदा से दूर लेकर जाएं वो दौलत है। अब मैं आपसे फिर पूछता हूं, आपको दौलत चाहिए या रिस्क चाहिए? रिस्क कम चाहिए या ज्यादा चाहिए? ज्यादा। रिस्क ज्यादा चाहिए, दौलत ज्यादा नहीं चाहिए, रिस्क ज्यादा चाहिए। तो मांगो, सही मांगो ना, दौलत क्यों मांगते हो, रिस्क मांगो। आप कहेंगे मौलाना हम लोग हर रोज इसीलिए कहते हैं अल्लाह हमर जुकना, लेकिन जुकना के पीछे क्या सोचते रहते हो? हम मुंह से तो अल्लाह हमर जुकना इसलिए कहते हो कि अल्लाह का शुक्र है मौला ने सिखाई ये दुआ, उसमें रिस्क लिखा है, उसमें पैसा नहीं लिखा है, लेकिन सोचते फिर वही पैसा ही हो। तो आप और मैं फौरन अपनी जिंदगी में सोचते हैं भाई, मिसाल के तौर पर मुझ जैसे आदमी को जिसको मौका मिला हुआ है, इसको फेम चाहिए, सर्विस चाहिए, तो मैं पागल हूं, फेम लेके क्या करूंगा, दो दिन में खत्म हो जाएगी, मर जाऊंगा फिर खत्म हो जाएगी, तो मैं कहूंगा मौला मुझे सर्विस चाहिए। क्यों? सर्विस से जो कुछ मुझे मिलेगा वो फेम से बहुत ज्यादा होगा। दूसरी बात, तुमको दौलत चाहिए या रिस्क चाहिए? तो मैं कहूंगा खुदा मैं दौलत लेके क्या करूंगा, दौलत तूने फिरौनों को दी है, दौलत तूने अबू जहलों को दी है, लेकिन रिस्क तूने अपने इमामों को दिया है, मुझे वो दे जो तूने अपने इमामों को दिया है, दौलत के लिए क्या करूंगा। मौला ने एक शेर फरमाया था कि हम अल्लाह की किस्मत पे जो तकसीम उसने खुदा ने की है हम राजी हैं। फरमाया कि रजीना बिलकस्मत जब्बार फीना, हम अल्लाह ने जो हमारे और दुश्मनों के दरमियान तकसीम किया है हम उस पर राजी हैं। उस अल्लाह ने हमें लनल इल्मो, उसने हमें इल्म दिया है और उनको दौलत दी है, हमें इल्म दिया है उनको दौलत दी है। तो आप भूले से भी दौलत नहीं मांगना, भूले से भी दौलत नहीं मांगना। क्यों? दौलत दुश्मनों के लिए रखी है, इमाम ने खुद फरमाया। हमारे लिए क्या रखा है? हमारे लिए इल्म रखा है। तो देखिए, दौलत भी मांगनी हो तो कैसे मांगो? जैसे अहले बैत ने हमें सिखाया, उन्होंने कभी नहीं कहा खुदा हमें दौलत दे, उन्होंने हमें सिखाया खुदा हमें रिस्क दे, रिस्क दे। रिस्क कौन सी दौलत है? रिस्क वो दौलत है जो खुदा के नजदीक लेकर जाती है, वो दौलत है। रिस्क हमेशा पॉजिटिव में काम आता है। मुझे पता नहीं कितनी मिसालें आपको पता हैं, पता नहीं कितनी मिसालें वो पता हैं जो मुझे और आप पता हैं। मैं एक वाकया आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, इसको खत्म करने की कोशिश करता हूं, फैली चली जा रही है बात। तो आपको शोहरत नहीं चाहिए, सर्विसेज चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, रिस्क चाहिए। मैं आखिरी बात कहता हूं इस सिलसिले में, औलाद चाहिए या आंखों की ठंडक चाहिए? कसरत औलाद जो कसरत मसाइब लाए उसका मैं क्या करूंगा भाई? औलाद कसीर हो जाए जिससे मसाइब बढ़ जाए, मुश्किलात बढ़ जाए, उसका मैं क्या करूंगा? मुझे आंखों की ठंडक चाहिए, दिल का सुकून चाहिए मुझे। तो ऐजान मोहतरम, सोच समझ के मांगने की कोशिश कर, क्या चाहिए आपको। और ये तो वो जगहें थी जहां पर बिल्कुल साफ मुकाबला था। अच्छा, बाज जगहें ऐसी होती हैं जहां पर मुकाबला इतना साफ नहीं होता। मसलन, अब जरा सा टिपिकल टेढ़ी जगह, वो ये आपको सुकून चाहिए या अल्लाह के राह में खिदमत करना चाहिए? अब टेढ़ा मामला हो गया ना। मिसाल के तौर, मिसाल देता हूं आपसे भाई, मैं खुदा से मांगता हूं, खुदाया मुझे जिंदगी में सुकून चाहिए। अच्छा, खुदा ने क्या किया? खुदा ने मुझे एंटार्क्टिका पहुंचा दिया। लो बेटा सुकून चाहिए, सुकून ही सुकून। अच्छा, अब मैं वहां पे पहुंच गया, सुकून ही सुकून, सब कुछ सही चल रहा है। तो अचानक मेरे दिमाग में आया कि यार मेरे हम ईमान सीरिया में बीबी का रोजा बचाने के लिए दिफा में लगे हुए, मैं एंटार्क्टिका में बैठा हूं। मेरे हम ईमान हम मजहब बच्चे बेचारे कुर्बान हो रहे हैं, मैं बड़ी सुकून की जिंदगी गुजार रहा हूं। कुछ दिनों के बाद मुझे अपने सुकून से नफरत होने लगेगी, या तो मेरा ईमान खत्म हो चुका होगा नाउज़ुबिल्ला, या मुझे सुकून से नफरत हो जाएगी। तो अब देखिए कितना अजीब मामला हो गया। आपको सुकून चाहिए या खिदमत चाहिए? تو خدا, میں خدا سے کہوں خدا ایسی خدمت دے دے جس میں سکون ہو, تو خدا مجھ سے کہے گا کہ بیٹا یہ وہ درجے نہیں ہیں جو بغیر امتحان کے ملتے ہیں, یہ وہ درجے ہیں جس کے لیے کچھ کچھ کرنا بھی پڑتا ہے. تو مثال کے طور پر ایک آدمی کہے خدا مجھے شہادت تو چاہیے لیکن کوئی زخم نہیں چاہیے. کون سی شہادت چاہیے تجھے بھائی؟ بھائی شہادت کے لیے تو زخم اٹھانا پڑتا ہے. کوئی میدان میں جاؤ گے تو گرتے ہیں شہ سوار ہی. بھائی کوئی میدان میں جنگ میں جائے گا تو شہ سوار کہاں بنے گا؟ میں کہہ رہا ہوں خدا مجھے شہادت چاہیے لیکن اے خدا نہ گرمی چاہیے آگ کی, نہ بلٹ کی چاہیے, نہ زخم چاہیے, کچھ نہیں چاہیے, بس یہ چاہیے. بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایک آدمی گیا ٹیٹو بنوانے کے لیے. قدیم زمانے میں جو پہلوان ہوتے تھے وہ اپنی باڈیز پہ ٹیٹو بناتے تھے, آج کل تو ککڑے سے بھی بنوانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. قدیم زمانے میں پہلوان بنوایا کرتے تھے. تو وہ جناب یعنی ایک پہلوان گیا وہ بنوانے کے لیے ٹیٹو والے کے پاس. تو اس نے ٹیٹو والے سے پوچھا کہ بھائی وہ جو پہلوان کی باڈی پہ ٹیٹو ہو کون سا ایسا ٹیٹو ہوتا ہے جو دہشت بٹھاتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی سب سے زیادہ جو ٹیٹو دہشت بٹھاتا ہے نا وہ شیر کا ہوتا ہے. کہنے لگا بس میں سمجھ گیا مجھے شیر کا چاہیے, بناؤ شیر کا. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ جو شیر کا بنانے لگا تو اس نے پنجے سے شروع کیا. اب اس نے پنجہ بنانے کے جب اس کو نڈل مارنا شروع کی ٹھک 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 ٹھک, تو پہلے تو اس نے برداشت کیا, اس کے بعد تھوڑی دیر میں کہا بھائی رکو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی پنجہ بنا رہا ہوں. کہنے لگا اس میں بہت تکلیف ہو رہی ہے, کہیں اور سے شروع کر. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے اس کے پھر منہ سے شروع کیا تو وہ منہ بنانے لگا. تو اس نے کہا رکو رکو کیا کر رہے ہو تم گاری؟ اس نے کہا کہ بھائی منہ بنا رہا ہوں, اس کا جبڑا ہے, اس میں دانت نکالنے ہوتے ہیں. کہنے لگا نہیں بہت تکلیف ہو رہی ہے. تو کہنے لگا پھر میں کیا کروں؟ کہنے لگا تم دم بنا دو, ایسا کرو. اس نے کہا بیٹا یہ جو شیر بغیر پنجے اور منہ کے ہوتا ہے اس میں کوئی ہیبت نہیں ہوتی ہے, دم سے کسی کو ہیبت نہیں آتی ہے. ہم اللہ سے کیا لینا چاہ رہے ہیں؟ نہ کوئی زخم کھانا ہے, نہ کوئی سختی اٹھانی ہے, کچھ بھی نہیں کھانا ہے, لیکن مقام اہل بیت کی ہمسائیگی چاہیے. ارے بھائی جن لوگوں نے اہل بیت کی ہمسائیگی لی وہ سولیوں پہ چڑھے تھے, پھانسیوں پہ نہیں, سولیوں پہ. پھانسی اور سولی میں بہت فرق ہوتا ہے, وقت نہیں ہے ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. جن لوگوں نے اہل بیت کی ہمسائیگی لی تھی وہ میدان جنگوں میں جسم کٹے ہیں ان کے, گردنیں لٹکی ہیں, نیزوں پہ پھرائی گئی ہیں. اور میں اور آپ کون سی لگژریس ایسی شہادت مانگ رہے ہیں پھر؟ تو فیکٹ آف لائف کو دیکھیں نا. ابھی دیکھیں مذاق کے پیچھے سب کا سب ہدف یہ ہے کہ آپ کو بات کنوے کرنی ہے, اور جو بات آپ کو کنوے کرنی ہے کہ بھائی آپ خدا سے جب کوئی چیز مانگ رہے ہیں تو کچھ کانسیکوینسز بھی تو ہوں گے. مثلا وہی مثلا اگر میں ابھی خدا سے کہتا ہوں خدا مجھے شہادت نصیب فرما. اب مثال کے طور پر ایک موقع آیا جب کراچی میں سیکیورٹی خراب ہو گئی. میں نے کہا بھیا ایسا یہاں سے چلو. اچھا یہاں سے چلا جاؤں, یہاں سے کیوں جا رہا ہوں؟ سارے شیعہ جا سکتے ہیں پاکستان سے؟ نہیں. تو میں اپنی جان بچا کے کہاں جاؤں, کیوں جاؤں؟ اس لیے کہ میری جان خطرے میں اور باقیوں کی جو خطرے میں. تو میں نے کہا باقی مرے سو مرے, میں تو اپنی جان بچا لوں. تو پھر تم شہادت کیوں مانگ رہے تھے؟ شہادت کیوں مانگی تھی پھر؟ امام زمانہ کا صحابی بننا کیوں مانگا تھا؟ آپ کہیں گے جان بچانا کیا واجب نہیں ہے؟ شہادت مت مانگو نا پھر. کوئی چیلنج تو لو. کوئی چیلنج نہیں لینا ہے, کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا ہے, کوئی ٹف ٹائم نہیں چاہیے, اور درجے سارے چاہیے. وہ درجے کہاں سے ملیں گے بھائی؟ تو عزیزان محترم آپ اللہ سے مانگتے وقت پہلے تو یہ سوچیجئے بھائی کوئی ڈھنگ کی چیز مانگے. دنیا نہ مانگیے, شہرت نہ مانگیے, طاقتیں نہ مانگیے, ان سب کے پیچھے اللہ کی خدمت مانگیں, بندوں کی خدمت مانگیں. اور مثال کے طور پر اولاد کے معاملے میں, دولت کے معاملے میں, میں نے عرض کیا آنکھوں کا سکون مانگیں, آپ اللہ سے رزق مانگیں, یہ سب چیزیں مانگیں. और फिर उसके बाद एक अगला मरहला आता है जो जरा टफ आता है, वो ये कि भाई आपने कुछ दर्जा मांगना है या नहीं मांगना है। अगर कुछ दर्जा मांगना है तो फिर कुछ सख्तियां भी उठानी पड़ती हैं। एक बंदे खुदा, एक बहुत नफीस वाकया याद आ गया, रिपीटेड मेरे पास सारे वाकया तकरीबन दोहराए हुए ही होते हैं। तो एक दफ़ा मदरसे हुज्जतिया में पढ़ा करता था ईरान में, चंद जुमले मसाइब की भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करने, वक्त बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। मदरसे हुज्जतिया में पढ़ता था मैं, मैंने ये तो नहीं कह दिया कि पढ़ाता था, पढ़ाता भी था थोड़ा थोड़ा, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पढ़ने के लिए था। तो मैं पढ़ने के लिए था, वहाँ पर एक दिन आया, वो दिन था जब ईरान में रेवोल्यूशन आया था, तो उसके दिन की छुट्टी थी वहाँ पे। तो उस दिन छुट्टी के दिन में एक बहुत नामी ग्रामी आयतुल्लाह होते थे, फौत हो चुके हैं, उनका दरस अखलाक रखा गया, आयतुल्लाह अहमदी मियांजी नाम करके। आयतुल्लाह अहमदी मियांजी बड़े अजीब दरस अखलाक के उस्ताद थे। तो वो जनाब अली, मैम कोई मोबाइल साइलेंट करने में मदद दे दे, तो वो जब तब हर महीने मोबाइल वाले नए नए मोबाइल लाएंगे तो कैसे समझ में आएगा कि साइलेंट कहाँ से होता है, सारी मुसीबत आ जाती है। हर महीने नया मॉडल ले आते, तो मेरे साथ भी होता है, मैं बंद कर देता हूँ, भाई इसका पता नहीं कहाँ से साइलेंट होगा, बज पड़ा कभी। तो जनाब अली, वो अहमदी मियांजी का दरस अखलाक रखा गया, आयतुल्लाह अहमदी मियांजी आए, उन्होंने दरस अखलाक दिया, बड़े नफीस नफीस बातें की, बहुत अच्छी अच्छी बातें, बड़ी ज़बरदस्त बातें की। आयज़ान मोहतरम, मुझे बाज़ औक़ात में दिमाग में कोई चीज़ आ जाती है ना, तो मुझे ये तो एहसास होता है कि पीछे से टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन फिर मैं अपने दिमाग से और अपनी तौफीक से डर रहा होता हूँ कि ना मेरे दिमाग को वो ताकत मिली, ना मुझे वो तौफीक मिली, तो क्या होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा वक्त ले लेता हूँ। तो अभी क्या हुआ कि अहमदी मियांजी साहब ने एक वाक़या और भी सुनाया था, जो सुनाया था जिसकी खातिर मैंने शुरू किया, तो मैं अभी सुनाऊँगा, एक और भी सुनाया था वो भी सुना दूँ, दोनों सुनाऊंगा। तो जनाब अली, हुआ ये कि इनकलाब का दिन था वो दिन, तो उन्होंने कहा वो जो इनकलाब का टाइम था ना, बड़ा ज़बरदस्त टाइम था, 4 जून को आयतुल्लाह खुमैनी की बरसी भी थी ना, अच्छा है जरा इधर टचिंग हो जाए। कहने लगे वो इनकलाब के दिन बड़े ज़बरदस्त दिन थे। फिर उन्होंने एक वाक़या सुनाया, अब मैं वाक़े के अंदर वाक़या मैंने कह रहा हूँ आपको, सही। उन्होंने एक वाक़या सुनाया, कहने लगे कि इनकलाब के दिनों में फ़ौज के साथ जंग चल रही थी, स्ट्रीट फाइटिंग, एक तरफ से जवान और लोग खड़े थे, दूसरी तरफ से फौज थी जो शाह की वफादार थी, जबरदस्त किस्म की फायरिंग वो एक दफा चल रही थी। कहने के इस फायरिंग के जमाने में बहुत क्योस था सड़क के ऊपर, लोग इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, तो कहने के कि एक बूढ़ी खातून को देखा, तो वो उस जमाने में टेलीफोन के वो होते थे ना, क्या बूथ्स होते थे, पब्लिक बूथ्स, तो कहने के एक पब्लिक बूथ के सामने टेलीफोन के वो खड़ी हुई थी, बूढ़ी सी खातून। तो कहने लगे कि एक आदमी आया जवान, उसने कहा कि बीबी आप यहाँ पे खड़ी मत हो, देखिए यहाँ पे इतनी फायरिंग हो रही है, खुदा न करे आपको लग गए तो कोई बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, आप कहीं जाके पनाह ले। उसने कहा नहीं बेटा मैं यहाँ पे खड़ी रहूँगी, मुझे एक काम है। उसने कहा आप मुझे बताएं मैं क्या काम मैं करूँगा। कहने लगे नहीं, एक काम मैंने खुद करना है। तो कहने लगे अच्छा आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं। तो उसने अपने हाथ में दिखाया, उस जमाने में ईरानी टेलीफोन बूथ के अंदर 2 रियाल का सिक्का पड़ता था, अब वो सिक्के भी खत्म हो गए, रियाल शाल की कहानी खत्म, 2 रियाल का सिक्का पड़ता था, वो 2 रियाल का सिक्का नहीं मिलता था, चेंज होता था ना, मिलता नहीं था। तो वो ढेर सारे सिक्के हाथ में लिए खड़ी थी, कहने का बेटा देखो मैं सिक्के लेके खड़ी हूँ, जो भी जहाँ जवान यहाँ से गुजरता ना, मैं उसको सिक्का देके कहती हूँ घर फोन करके अपनी माँ को बताओ मैं जिंदा हूँ। कहने की मुझे अपने बेटे की खबर नहीं मिल रही ना, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं नहीं चाहती किसी और जवान की माँ भी तड़प रही हो, तो मैं सिक्का देके इसको कहती हूँ अपने घर को फोन करके बताओ कि मैं जिंदा हूँ, परेशान हो रही उसकी माँ। तो उसने कहा माँ जी अगर उसको पता चल जाएगा तो क्या होगा। कहने की बेटा मैं और इनकलाब के लिए क्या कर सकती हूँ, तुम लोग जवान लड़ रहे हो ना, मैं ये तो कर सकती हूँ ना, ये तो करूँ। ये इनकलाब ताकतों से नहीं आते, ये इनकलाब खुलूस से आते हैं, जैसे इन बूढ़ी खातून का खुलूस था, इससे इनकलाब आते हैं। फिर उस्ताद अहमदी मियांजी ने जो असली बात मैं आपको सुनाने वाला था वो ये थी, कहने लगे कि उनके पास एक शागिर्द आया और उसने कहा कि उस्ताद मेरी जिंदगी में मसाइल बहुत ज्यादा हैं, मुसीबतें खत्म नहीं होती, एक मुसीबत से निकलता हूं दूसरी मुसीबत में पड़ जाता हूं। तो उस्ताद ने कहा कि तुम खुदा ना करे कोई गलती तो नहीं कर रहे, कोई गुनाह? तो उसने बताया कि नहीं उस्ताद, मैं आपका शागिर्द हूँ, मेरी ज़िंदगी में ये है और जैसे आप कहते हैं मैं वो करता हूँ। फिर उस्ताद ने पूछा कि तुम दुआएं कौन कौन सी पढ़ लो? तो उसने कहा कि उस्ताद जो आप जिक्र कहते हैं मैं वही जिक्र करता हूँ, मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं कर रहा हूँ। तो उस्ताद ने कहा कि अच्छा एक काम करो, ये जो तुम नमाज के बाद दुआएं मांगते हो ये क्या दुआएं मांगते हो? तो उसने नमाज के बाद जो दुआएं मांगता था वो बताई और उसमें एक जगह वो कहता था कि ए खुदाया मुझे अमीरुल मोमिनीन के असहाब में से करार फरमा। तो उस्ताद अहमदी मियां जी ने कहा कि बेटा जब तुम खुदा से अमीरुल मोमिनीन का सहाबी बनना मांग रहे हो तो तुम समझ रहे हो कि मुश्किलात नहीं आएंगी? फरमाया अभी तो शुरू हुआ है, क्या तुमको नहीं पता सहाबी जो अमीरुल मोमिनीन के थे वो सूली पे चढ़े थे? तुम उनसे मांग रहे हो खुदा से कि मुझे सहाबी करार दिया अमीरुल मोमिनीन का और मुश्किलात पे परेशान हो रहे हो, या तो तुम मुश्किलात से अपना रिश्ता जोड़ लो कि मुश्किलात आएंगी, या ये दुआ मांगना छोड़ दो, इस दुआ के पीछे मुश्किलात आती। तो आयजान मोहतरम शब कदर से पहले हम खुदा से क्या मांगना चाहते हैं? जो मांगे अन बसीरतिन, बसीरत के साथ मांगे। कुछ दुआओं पर मुश्किलात आती हैं, जब मुश्किलात आए और मैंने चिढ़कर खुदा से कहा खुदा मुश्किल क्यों आई, तो मेरी दुआ को खुदा कैंसिल कर देगा, मुश्किलात को बरतरफ कर देगा। क्योंकि इस एतराज का मतलब यह है कि अब मुझे वो स्टेटस नहीं चाहिए। तो आप कहेंगे भाई राय हल क्या है? एक राय हल है, आप खुदा से सही दुआएं मांगें और जब कोई मुश्किल आए तो खुदा से कहें खुदाया अगर ये मुश्किल मेरी गलती से है तो मैं गलती की तौबा करता हूं, पनाह मांगता हूं तेरी, और अगर ये मुश्किल तूने मेरे इम्तिहान में करार दी है तो खुदाया मुश्किल की दूरी नहीं मांग रहा, इम्तिहान में कामयाबी मांगूंगा, मुझे इम्तिहान में कामयाब करे। मैं आपको एक जनरलाइज रूल देने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल काम होता है, ये कहां की मुश्किल आई है। तो आप एक उसूल ले लें, खुदा से हमेशा मुश्किल पर ये कहें खुदाया इस्तकामत दे दे, कामयाबी दे दे मुश्किलात में, ना कह मुश्किल बरतरफ कर दे, क्योंकि बाद औकात मुश्किलात इम्तिहान में आती हैं, उनको बरतरफ करने का मतलब ये मैं एग्जामिनेशन हॉल से बाहर जाना चाह रहा हूं, पेपर कैंसिल, आप बाहर, आप क्यों अपना पेपर कैंसिल कर रहे हैं? आप बैठे मुश्किलात के अंदर और क्यों खुदा मुश्किल भी तेरी तरफ से आई है, इस्तकामत भी तेरी तरफ से आती है, मुश्किल में कामयाबी देते हैं। इस रास्ते से आपकी मानवियत का दरवाजा नहीं रुकेगा, वरना खुदा खुदा ना करे नाउज बिल्ला ताला मेरी और आपकी मानवियत रुक जाएगी, हम लोग सुकून से बैठे रहेंगे फिर। और मैं बहुत आपके सामने वाकन हाथ जोड़कर कह रहा हूं, मुझे आप लोगों के बारे में यही डर लगा रहता है, आप लोग सुकून से बैठे, मुझे डर लगा रहता है कि यहां कुछ लोग वो सुकून से बैठे हैं जिन्होंने सुकून ही मांगा था इस टाइप का, लेकिन कुछ लोग वो सुकून से बैठे हैं जो गलती से सुकून मांग के बैठ गए। तो अगर वो सुकून से बैठे हैं जिनको वाकई सुकून चाहिए था एंटार्क्टिका वाला, तो बिस्मिल्लाह हनी अन मरिया एंजॉय करो इसको, लेकिन अगर वो हो जिसने कुछ और मांगा था गलती से सुकून मांग लिया है तो फिर मैं उसको कहूंगा अल्लाह से दर्जात मांगो, सुकून मत मांगो, अल्लाह से कामयाबी मांगो, इस्तकामत मांगो और मुश्किलात की दूरी मत मांगो। हाँ बाद वक्त मैं भी जब दुआ कर रहा होता हूं तो कहता हूं खुदा जितने भी अहले बैत के चाहने सबकी मुश्किलात को बरतरफ फरमा, लेकिन मेरे जहन में मुश्किलात की बरतरफी ये नहीं होती कि मुश्किलात से बाहर निकल जाए, मेरे नजदीक मुश्किलात की बरतरफी ये होती है कि अब वो मुश्किल इसको काउंट नहीं करता, मुश्किल काउंट नहीं करता, क्यों? ऑब्जेक्टिव उसके लिए मुश्किल को आसान कर देता है। अहले बैत के चाहने वाले ऐसे ही थे, मुश्किल से दूरी नहीं मांगते थे, अगर मुश्किल से दूरी मांगते ना तो खुदा करबला की मुश्किल में नहीं डालता, हमेशा इस्तकामत मांगते थे, हमेशा कामयाबी मांगते थे, खुदा हमें कामयाब करते। और आप दुआओं को उठाकर देख लीजिए, रब्बना अफ्रग अलैना सब्रा, खुदाया हमारे ऊपर सब्र की बारिश बरसा, अफ्रग अलैना सब्रा वसब्बित अक्दामना, खुदाया हमारे ऊपर सब्र की बारिश बरसा, हमारे कदमों को मजबूत कर दे। देखिए अगर ये कह रहा होता ना कि मुश्किलात से बाहर निकाल दे तो ना कहता कदमों को मजबूत कर दे। फरमाया अल्लाह ने कि मोमिन क्या कहता है, रब्बना अफ्रग अलैना सब्रा, हम पे सब्र की बारिश बरसा, सब्बित अक्दामना, हमारे कदमों को मजबूत कर दे, वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, खुदाए जो तेरी दीन के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं उनके सामने हमें फतह नसीब फरमा। कल इंशाअल्लाह मौका मिला तो मैं आपकी खिदमत में एक दुआ अर्ज करूंगा, 15 शाबान की एक इंतहाई नफीस दुआ है, जो 15 शाबान तो जाहिर किया अब नहीं है लेकिन वो दुआ बहुत ज्यादा वैलिड दुआ है, उसको आपकी खिदमत में अर्ज करने की कोशिश करूंगा। ऐज़ान मोहतरम, सिर्फ चंद जुमले मसाइब की आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, चूंकि हमसे कहा गया कि मजलिस से सेवों में मरहूमीन के लिए भी है, ताकि ये मसाइब का तबर्रुक भी इंशाअल्लाह खुदा मरहूमीन की अरवाह तक पहुँचाए। अज़ीज़ो, सिर्फ चंद जुमलों में अगर मैं अर्ज़ करूँ तो मैं तालिबे इल्म हूँ और तालिबे इल्म होने के नाते मैं मसाइब को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। बाज़ औक़ात बाज़ मसाइब ऐसे हैं जिसके पीछे इमाम हुसैन का गम झलक रहा है, बाज़ मसाइब ऐसे हैं, जैसे इंसान उन मसाइब तक पहुंचता है सैयदुश्शुहदा के गम को देखता है उन मसाइब के अंदर। बाज़ मसाइब में एक और तरीके से हमें अहले बैत की मुश्किलात मसाइब नजर आते हैं, लेकिन बाज़ में सैयदुश्शुहदा का गम नजर आता है। उन जगहों पे जहां पर इमाम हुसैन का गम नजर आता है, एक जगह वो है जब अली अकबर को अलविदा किया है, इमाम हुसैन का गम उस जगह नजर आ रहा है जहां अली अकबर को अलविदा किया, और जगहें भी हैं, बस जगहों पे बीबी जैनब का गम नजर आता है। आई जो बीबी जैनब का नाम लिया तो दो जुमले कैसे ना कहूं, जरा उस लम्हे को सोचना जब बीबी सैयदुश्शुहदा के तनहा लाशे को देख रही थी। बाज मसाइब में इमाम हुसैन के गम झलकते हैं जब इमाम मसरन अली अकबर को अलविदा कर रहे थे। अगर उस लम्हे को अर्ज करूं जब अली अकबर को अलविदा कर रहे थे, ऐसे वो जुमला आपके जहन में है जब इमाम हुसैन ने अली अकबर से कहा कि बेटा दुश्मन तक पहुंचने से पहले मुझे मुड़ मुड़ के देखते रहना। कैसा गम नजर आ रहा है इमाम हुसैन का। या इमाम हुसैन जब अली अकबर के लाशे पर पहुंचे और कहा वो आले दुनिया बाद खेल अफवाह, अकबर तेरे बाद दुनिया भी कुछ नहीं है, यहां इमाम हुसैन का गम नजर आता है। लेकिन ऐसे एक दो जगह चंद जगहें ऐसी हैं करबला में जहां बीबी जैनब कुबरा का गम नजर आता है। बीबी जैनब कुबरा वो हैं जिनके दिल को इमाम हुसैन ने मजबूत किया था कि अब बीबी उन मसाइब को झेल सके। लेकिन कुछ मसाइब इतने अजीब हैं, इतने अजीब हैं, बीबी जैनब कुबरा का गम झलकने लगता है। अजीज उस मंजर को आपके सामने बयान करूं, हमारे दोस्त ने बड़ा अच्छा किया कि थोड़ा अंधेरा कर दिया ताकि रोना आसान हो जाए हमारे लिए, ताकि मैं इमाम हुसैन के लिए रोऊं तो मुझे शर्म ना आए और मेरा चेहरा कोई देख ना पाए, मैं अपने इमाम के लिए दिल खोल के रो सकूं। वो कौन सा लम्हा था जब बीबी जैनब सलामुल्लाह अलैहा का गम नजर आया था। अजीज उस लम्हे को सोचना जब असरे आशूर गुजर चुकी थी, लाशें जमीन के ऊपर रखे हुए थे, दुश्मन घोड़े दौड़ाने की तैयारियां कर रहे थे।
ایک ایک بی بی اپنے لاشے کو دیکھ رہی تھی، اپنے عزیز کے لاشے کو دیکھ رہی تھی کہ اب میرے بھائی کی لاشے پر گھوڑے دوڑنے والے ہیں. لیکن عزیزوں ایک عجیب لمحہ آیا، اسدی قبیلے کے لوگ سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ جو بھی اسدی قبیلے کا بندہ ہے اس کا لاشا پامال نہیں ہوگا، ہم قبیلہ اسد یہاں پر ہیں بنی اسد، ہم کسی لاشے کو پامال نہیں ہونے دیں گے. تو اسدی قبیلے کے لاشے اٹھا کر لے گئے وہ لوگ، اسدی قبیلے کی لاشیں چلے گئے. اس کے تھوڑے دیر کے بعد ریاحی قبیلہ آیا اور ریاحی قبیلے نے کہا کہ ہم بھی بڑا قبیلہ ہیں، ہمارا بھی کوئی لاشا پامال نہیں ہوگا. وہ لوگ بھی اپنے لاشوں کو اٹھا کر لے گئے. بجلی قبیلہ آیا، بجلیوں کے لاشے بھی چلے گئے. عزیزو جب سارے عرب بڑے بڑے قبیلوں کے لاشے چلے گئے تو حبشی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم حبشی ہیں، یہاں پہ کچھ لاشے حبشی بھی ہیں، حبشیوں کے لاشے بھی چلے گئے. عزیزو اب زمین کے اوپر صرف حسین کا لاشا رہ گیا، اب صرف مظلوم ایک فاطمہ کے بیٹے کا لاشا رہ گیا. اور بی بی زینب بیچاری پکار اٹھی کہ اے خدا سب کا کوئی وارث ہے، میرے بھائی حسین کا کوئی وارث ہے. آج میں کہوں گا بی بی آج اگر کوئی وارث ہے تو حسین ہے اور حسین کے ماننے والے. کروڑوں لوگوں کو خدا نے دنیا کے کونوں کونوں سے کربلا میں بھیجا ہے، آج سب یا حسین یا حسین.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اے پاک پروردگار جنہوں نے سید الشہداء اور اولاد سید الشہداء پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے خدا پرچم حسین اولاد حسین کو دنیا کے کونے کونے تک. اے پاک پروردگار دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی عزاداری سید الشہداء میں مشغول ہے، اے پاک پروردگار اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. خدایا دنیا کے کونے کونے میں امیر المومنین کے ماتم کی آوازیں بلند ہونے والی ہیں، پاک پروردگار عزاداران امیر المومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے خدایا حب اہل بیت کے صدقے میں ہمیں شب قدر کی فضیلت نصیب فرما، ماہ مبارک رمضان کی فضیلت نصیب فرما. اے پاک پروردگار مجلس مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ہے، سید الشہداء کے غم کے صدقے میں اور ان آنسوؤں کے صدقے میں ان مرحومین مومنین مومنین و مومنات کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، ان سب کو اہل بیت اطہار کی شفاعت نصیب فرما. اے پاک پروردگار آخرت میں اہل بیت اطہار کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار دعائیں تیری حجت کے لیے اسی قلب کے ساتھ، اے پاک پروردگار جس پہ تو نے غم حسین نصیب کیا ہے، خدایا تجھے واسطہ غم حسین کا، سید الشہداء کی قربانیوں اور ان کے اولاد طاہر اور خاندان کی قربانیوں کا، سید السردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. اے پاک پروردگار ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اذان محترم کسی بیمار نے شفا کے لیے کہا ہے، بیمار کی بیماری کے لیے شفا کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، ایک عزیز کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کراچی میں، آج ہی ان کے سر میں بہت شدید چوٹ لگی ہے، آپریشن تھیٹر میں تھے جب میں آ رہا تھا. خدا سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار اب یقیناً آپریشن اچھا ہو چکا ہوگا. خدا یا تجھے نبی اور اولاد نبی کا واسطہ ان بیماروں کو شفا نصیب فرما. اے پاک پروردگار آخری دعا تیرے حضور حجت خدا کے حوالے سے، خدایا ہمیں حجت خدا کے آبان و انصار میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بجاہ محمد و آلہ الطاہرین ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص تمام مرحومین کے لیے، بالاخص وہ مرحومین جن کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد درود بيجا محمد وعلى محمد متوجہ زیارت السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا صفی اللہ السلام علیکہ یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین السلام علیکہ یا امیر المؤمنین یا اسب الدین مولا المتقین السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیکہ یا امام المصطفیٰ حجت اللہ علی الخلق اجمعین السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا على أخيك أبو الفضل العباس وسائر المستشهدين معك السلام عليك يا مولاي يا إمام زين العابدين السلام عليك يا إمام الباقر السلام عليك يا إمام جعفر الصادق السلام عليك يا إمام موسى الكاظم السلام عليك يا غريب الغرباء يا علي بن موسى الرضا المرتضى الرازي بالقدر والقضاء السلام عليك وعلى أختك فاطمة المعصومة السلام عليك يا إمام التقي السلام عليك يا إمام النقي السلام عليك يا إمام الحسن العسكري السلام عليك يا سيدي ومولاي يا صاحب الأسر والزمان الأمان 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 من فتن الزمان ومن شر الشيطان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا كعبة الإيمان السلام عليك يا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وجعلنا من أوانك وأنصارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته